जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Shtotra Sata His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaurnitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब सुखी है ना? ये प्रश्न आज के श्लोक से संबंधित है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि ये प्रश्न आज के विषय से किस तरह से संबंधित है। श्रीमद् भागवत के सातवें तीसरे स्कंध के सातवें अध्याय में ये 17वां श्लोक है और इस अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। इस संवाद के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जाती है। आइए सुनते हैं कि ये क्या है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धिः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धिः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धिः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। माताजी कोई बोलेंगे? यस्तमूढतमो लोके यस्य बुद्धे परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ और अनुवाद। यह जो च भी मूढ़तमः निकृष्टतम मूर्ख लोके संसार में यह च तथा जो बुद्धेः बुद्धि का परम दिव्य गतः गया हुआ तो उन उभौ दोनों सुखम सुख एधेते भोगते हैं क्लिश्यति कष्ट पाते हैं अंतरितः बीच में स्थित जनह लोग अनुवाद निकृष्टतम मूर्ख तथा बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं जबकि उनके बीच के पुरुष भौतिक क्लेश पाते हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। निकृष्टतम मूर्ख तथा बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं जबकि उनके बीच के पुरुष भौतिक क्लेश पाते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग ही सुखी हैं। पहला है मूढ़तमः। मूढ़तमः मतलब निकृष्टतम मूर्ख। जो बहुत ज्यादा मूर्ख है वो सुखी है, वास्तव में नहीं, इसलिए कहा गया है कि वो सोचता है अपने आप को सुखी, हालांकि यहां वो सुखी तो नहीं रह सकता। फिर भी ये केवल इस दृष्टि से बोला जा रहा है कि वो वास्तव में मूर्ख है इसलिए अपने आप को सुखी समझता है, इसलिए मूढ़तमः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो आदमी पशु तुल्य है, जो अपनी अवस्था को समझ नहीं सकता है, वो मूढ़ कहलाता है, मूर्ख है, और सोचता है कि संसार का भोग करना यही जीवन का उद्देश्य है, इससे अधिक वो कुछ नहीं जानता, ना भगवान की उसे परवाह है ना कुछ। जैसे पशु अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जीता है वैसे ही ये व्यक्ति जीता है, अपने दुखों को पहचानता भी नहीं है, अपनी दुखद अवस्था को नहीं जानता। ऐसे बताया गया है कि मनुष्य योनि की एक विशेषता ये है कि दुख पाते हुए भी व्यक्ति अपने आप को सुखी समझता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है मनुष्य जगत में, मनुष्य समाज में। और दूसरे तरह के लोग जो सुखी हैं, वो वास्तव में सुखी हैं। वो हैं बुद्धे परम गतः, जिनकी अवस्था भौतिक अवस्था से परे है, जो वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी है। लेकिन पहले श्रेणी का जो व्यक्ति है वो बहुत दुखी है लेकिन अपने आप को सुखी समझता है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि दो प्रकार के सुखी लोग हैं, वास्तव में एक ही प्रकार के हैं। जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं, जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और इन दो सुखी लोगों के बीच में कौन है? क्लिश्यति अंतरितो जनः। अंतरितो मतलब बीच में स्थित होने वाले, जनः क्लिश्यति, वो क्लेशों को भोगते हैं, कष्टों को भोगते हैं, वो दुखी हैं। केवल ये दो श्रेणी जो हैं, मूढ़तमः जो अति मूर्ख है और जो अति बहुत ही अधिक पहुंचा हुआ आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति है, ताव उभौ सुखम एधेते, वो दोनों ही सुख भोगते हैं। हालांकि जैसे हम देख चुके हैं कि दोनों के सुख में जमीन आसमान का अंतर है। पहले श्रेणी का व्यक्ति जो मूर्ख है, वो जो सुख भोगता है वो वास्तव में सुख नहीं है, परंतु अज्ञानवश वो इस चीज को सुख मान बैठता है। और जो सुख शुद्ध भक्त भगवान का अनुभव करता है वो वास्तविक सुख है। श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि तीन प्रकार के सुख हैं। कोई किसी व्यक्ति को आप पूछिए कि कौन से तीन प्रकार के सुख हैं, तो एक वो बोलेगा क्रिकेट मैच देखना, दूसरा सिनेमा देखना, तीसरा होटल में खाना। इस तरह के सुख की बात नहीं हो रही। तीन प्रकार के सुख मतलब, पहला है भोग, विषयों का भोग करना, संसार का सुख। इसमें सब आ जाता है, टेलीविजन, सिनेमा, भोग और होटल में जाना, सिनेमा, सब कुछ आ जाता है इसमें। संसार का सुख, इंद्रियों का सुख, संसार का सुख, जिसे विषय भोग कहते हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो या स्थूल रूप से हो। दूसरे श्रेणी का सुख जो इससे श्रेष्ठ है परंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो है भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाना, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना या निराकार ब्रह्म की उपासना करना। ये दूसरे श्रेणी का सुख है, ये वास्तविक सुख ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें केवल भौतिक दुखों का निवारण मात्र होता है, सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। सच्चे आनंद की प्राप्ति तो केवल तीसरे तरह के सुख में होती है, और वो है कृष्ण भक्ति का सुख। जब व्यक्ति मान लेता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान श्री कृष्ण एक परम व्यक्ति हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, और उनकी सेवा करने से ही हम परम आनंद प्राप्त करेंगे, वो भक्त है, वो तीसरे प्रकार के सुख का अनुभव करता है। और ये भक्ति का आनंद जो है, ये श्रेष्ठतम आनंद है, इससे ऊंचा कोई आनंद नहीं है। परंतु दुर्भाग्यवश लोग इस सुख को नहीं जानते हैं, वो केवल पहले तरह का जो सुख है उसी को जानते हैं, दूसरे तरह सुख को भी नहीं जानते। जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, वो तीसरे प्रकार के सुख की ओर न आकर वो निराकार ब्रह्म की तरह जाते हैं, की तरफ जाते हैं। क्योंकि अधिकतर जहाँ भी आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है, वह यही बताया जाता है कि भगवान निराकार हैं, उनका व्यक्तित्व नहीं है, वो एक शक्ति हैं, वो एक ज्योति हैं, और उस निराकार ज्योति के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, ऐसे सब चीजें उनको सिखलाए जाते हैं। तो भोग या इंद्रिय तृप्ति के ऊपर उठना भी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आते हैं। विरला ही ऐसे कोई भाग्यशाली व्यक्ति हो जो कृष्ण भक्ति के पथ में चले आता है। तो पहले प्रकार के जो व्यक्ति है जिनको मूढ़ कहा गया है, वो मूढ़ इसलिए कहा गया है उनको कि उनका जीवन बिल्कुल पशुओं की तरह होता है, दिन रात वो मेहनत करते हैं। उनके सुख, उनका सुख कैसे होता है? वो सोचते हैं कि दिन भर संघर्ष करना और फिर थोड़ा कुछ इंद्रियों का सुख पाना, यही सब कुछ है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार से एक निम्न श्रेणी का पशु होता है, जैसे सुअर हो, शुकर, वो गंदी जगह में रहना पसंद करता है, केवल गंदी चीजें खाता है, केवल मैथुन का सुख का अनुभव करने का की लालसा रखता है और दिन भर इधर उधर परिश्रम करता है, वही उसके सुख का अनुभव है, और इससे ऊंचा कोई सुख, इससे कोई दूसरा सुख नहीं जानता वो। और भगवान की माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जब कोई जीव ऐसे शरीर में आ जाता है तो इससे ऊपर सोच ही नहीं सकता। वो कथा तो आप जानते ही हैं कि देवराय इंद्र को एक बार जब श्राप मिला कि वो एक सुअर के शरीर में चले जाए, तो बेचारे इंद्र को सुअर का शरीर धारण करना पड़ा, और ऐसे अवस्था में वो इतने मग्न हो गए कि जब नारद मुनि उनको बुलाने आए वापस कि चलो भाई, तुम्हारे शाप का समय समाप्त हो गया, अब तुम्हें वापस इंद्रदेव बनना है, देवराज इंद्र हो तुम, स्वर्ग लोक की गद्दी अब खाली है, चलो। तो इंद्रदेव ने नहीं माना, वो कहने लगे मुझे बहुत कर्तव्य हैं, बहुत कार्य हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर हैं, तो मैं नहीं आ सकता। और जो शुकर होते हैं उनका सुख क्या होता है आप तो जानते ही हैं, और इंद्रदेव का सुख कहाँ। भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इंद्रदेव का सुख तो एक मनुष्य के सुख के तुलना में भी बहुत ऊंचा है। तो एक सुअर का सुख क्या कहना, फिर भी इंद्रदेव नहीं जाना चाहते थे। ये है भौतिक जगत का प्रभाव जीव के चित्त के ऊपर। तो ये मूढ़ जीवन में व्यक्ति अपने कष्टों को नहीं समझ पाता है, वो सोच भी नहीं सकता कि मेरी दुखद अवस्था कैसी है। वो यही सोचता है कि कैसे मेरी इंद्रियों को तृप्त किया जाए, यहाँ एक थोड़ा सुख मिल रहा है, वहां थोड़ा सुख मिल रहा है, बस इधर भागना उधर भागना थोड़ा बहुत सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति का सुख बस इसी में वो लगा रहता है। लेकिन सबसे ऊंचे सुख भक्ति का अनुभव ऐसे व्यक्ति को है ही नहीं। वो सुनना भी नहीं चाहता कि मृत्यु आने वाली है और मृत्यु के समय हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा, देखते हुए भी नहीं देखता है। पश्यन्नपि न पश्यति, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निणम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे कहा गया है कि वो अपने इंद्रियों को संसार के विषयों में इतना मग्न कराता है, सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं उसके लिए, देखने के लिए बहुत विषय हैं, बात करने के बहुत विषय हैं, करने के लिए बहुत सारे संसार के कार्य हैं, और इन्हीं में मग्न रहता है। अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मतत्व आत्म साक्षात्कार के बारे में कोई रुचि नहीं है उसके लिए। गृहेषु, अपने गृह में रहकर अपना गृह ही सब कुछ है ये मानता है। गृह मेधिनाम, दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं। एक है जो वास्तव में गृहस्थ होते हैं, गृह में स्थित होकर भगवान का आश्रय लेते हैं, इसलिए उनकी अवस्था को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। और दूसरे हैं गृह मेधी, जिनकी बुद्धि केवल उनके कुटुंब में और उनके संसार में पड़ी हुई है, वो इससे आगे पीछे कुछ नहीं देखना चाहते हैं, और जीवन की सफलता परिवार के सुख ऐसा है यही मानते हैं। जब उनको बताया जाए कि भाई मृत्यु आने वाली है, तो मृत्यु में न तुम्हारा परिवार साथ रहेगा, न तुम्हारा धन रहेगा, न प्रतिष्ठा रहेगी तुम्हारी, कुछ नहीं रहेगा, वो सोचने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, भौतिक नियमों को लांग कर सुख प्राप्त करने की, परंतु ऐसे कैसे संभव है। ते पीश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा, हम बहुत सख्त तरह से प्रकृति के कड़े नियमों से बंधे हुए हैं। जितना भी हम क्यों ना प्रयास करें, जितना भी हमारा विज्ञान आगे क्यों ना बढ़े, हम प्रकृति का सामना नहीं कर सकते हैं। अभी आपने शायद सुना होगा या समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि पिछले 3-4 दिनों में बहुत बड़ी दुर्घटना जापान देश में हुई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। एक भूकंप हुआ समुद्र के तल पर, और वहां से समुद्र का जल जो इतने बड़ी मात्रा में चले आया, ऐसे 30 फुट का पानी का दीवार 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर, जैसे विमान हवाई जहाज की गति जो होती है ना, वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है प्रति घंटे, और ये पानी जो आया जो बह रहा था वहाँ, वो इस गति से चल रहा था। 30 फुट ऊंचा दीवार पानी का और पीछे काफी चौड़ा, जमीन में तट पे 10 किलोमीटर दूर तक अंदर चला गया पानी, और जो हवाई जहाज थे, रेलगाड़ी थे, गाड़ियां थी, वो तो उड़ के चली गई, और फिर से पानी खींच कर वापस चला गया, इन सबको वापस समुद्र में ले गया। यहां तक ऐसे सुना है कि 4 रेलगाड़ियां लापता हैं। रेलगाड़ी कोई छोटे बच्चे की खेलने वाली गाड़ी नहीं, बड़ी रेलगाड़ी। देखिए कितना दुख, किसी ने हमें अखबार दिया पढ़ने के लिए, हम ट्रेन से कल आ रहे थे, तो ये सारी बातें अखबार में लिखी हुई थी। हम आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, चाहते थे, इतना दुख लगता है पढ़ के, इतना सारा, इतनी बड़ी दुर्घटना। कल्पना कीजिए कि रेलगाड़ी का पता नहीं, तो फिर कितना भयंकर हुआ होगा ये। और जापान एक ऐसे देश है जो एक बहुत उन्नत देश माना जाता है, तकनीकी ज्ञान वगैरह विज्ञान उनके पास बहुत कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, परंतु देखिए प्रकृति ने अपनी शक्ति का थोड़ा लेश मात्र प्रदर्शन किया और सारा देश, सारी दुनिया हिल गई है। और वो जब भूकंप हुआ उससे पश्चिम दिशा में जापान की ऐसी दशा हुई, उधर पूर्व की दिशा में अमेरिका के तट पे अनेक जगह खूब पानी चले आया, हालांकि वो हजारों मील दूर था। तो हमें सोचना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों को कभी भी हरा नहीं सकते हैं। और आजकल ऐसे देखा जा रहा है कि जगह जगह ऐसे प्राकृतिक जो आपत्तियां हैं वो बढ़ती जा रही है। अभी अभी चीन में भी, उसी अखबार में हमने पढ़ा, चीन में कहीं दूसरी जगह तिब्बत के पास में वहां भी एक भयंकर भूकंप हुआ, दूसरा और किसी देश में कहीं तो और कोई दुर्घटना हुई। दुर्घटनाएं तो पहले हुआ करती थी, ये तो प्रकृति का नियम है, परंतु हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15-20 सालों में ऐसे प्राकृतिक आपत्तियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल ही बहुत सारा बाढ़ हुआ नदी में, जिसके कारण अनेक शहर डूब गए, करोड़ों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। तो कहीं ऐसे दावानल हुए, जंगल को आग लग गई और लाखों एकड़ में जितने भी पेड़ थे, घर थे, सब जल के राख हो गए। ये सब आगे बढ़े हुए, तथाकथित आगे बढ़े हुए देशों में ये सब हुआ है। 2-4 साल पहले अमेरिका में ऐसी बर्फ पड़ी कि एक हफ्ते भर सब कुछ बंद रहा, ना बिजली ना कुछ। तो हम कैसे सामना कर सकते हैं प्रकृति के नियमों का? संभव नहीं है। फिर भी ये इंद्र तृप्ति की भावना, ये अज्ञान इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति को ये लगता है कि मैं विजय अवश्य प्राप्त करूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, और हूं इंद्र तृप्ति करके, और तरह तरह से मृत्यु के टाल को टालने का प्रयास करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो शिल्पकार था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था, बहुत प्रवीण था इस कला में, वो साथ साथ ज्योतिष शास्त्र भी जानता था। तो उसने अपने मृत्यु का समय ढूंढ निकाला ज्योतिष शास्त्र से कि मेरी मृत्यु इस दिन पे होने वाली है और इस जगह होने वाली है और इस क्षण में होने वाली है। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, मुझे तो बहुत और इंद्र तृप्ति करना है और मेरे पत्रिका के अनुसार तो मेरी मृत्यु ऐसे होनी है, तो मुझे मृत्यु को टालना चाहिए, यमराज को धोखा देना चाहिए। तो कैसे धोखा दिया जाए यमराज को? सोचते सोचते एक मन में विचार आया कि हाँ, बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाले में मूर्तियों की मैं बनाऊंगा उनको, मेरे जैसे बिल्कुल, ताकि यमराज जब आए तो पहचान नहीं पाए कि कौन मैं हूं और कौन मेरी मूर्तियां हैं। तो 8-10 ऐसे मूर्तियां बना दी, 8-10 नहीं 10-15 भी बनाए होंगे, बिल्कुल उस व्यक्ति के जैसे दिखने में, और ऐसे सब हाथ ऐसे करके बैठा हुआ व्यक्ति, और इतने सारे मूर्तियां बन गई। और जब वही क्षण आया मृत्यु का जो कि पत्रिका में लिखा हुआ था, वो व्यक्ति मूर्तियों के बीच में बैठ गया लाइन में, और वो भी ऐसे करके बैठ गया। उसे पता था कि यमराज अब आने वाले हैं, और आए यमराज, अपने वाहन पर बैठ के आए कि चलो इस आदमी को ले जाना है। देखा तो अरे ये सब एक जैसे दिखते हैं। तो यमराज जड़े परेशान हो गए कि कौन सा सही व्यक्ति है, इसमें सब एक जैसे दिखते हैं, मूर्ति कौन सी है, ये व्यक्ति कौन है, तो यदि हम इसको पहचान ही नहीं पाएंगे तो ले कैसे जाएंगे इसको। तो यमराज खड़े हो गए शांति से देखते हैं कितने समय तक ये ऐसे ही बैठ सकता है। वो व्यक्ति भी बैठा रहा आराम से, उसने कुछ हिला ही नहीं, आंख बंद कर गया, ऐसे ही बैठा था। पर यमराज ने तरकीब सोची। यमराज को पता था कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पर लोग बहुत चीजें सहन कर सकते हैं लेकिन अपनी निंदा सहन नहीं कर सकते। तो यमराज बड़े बुद्धिमान है ना, इसलिए तो यमराज बने हैं। तो उन्होंने कहा, अरे छी छी, कितने गंदे शिल्पी है, कुछ उसे करना ही नहीं आता। ऐसी मूर्तियां तो हम भी बना सकते हैं, कोई बच्चा भी बना सकता है, कितनी बेकार की मूर्तियां हैं। इस व्यक्ति का गुस्सा हो, क्या मतलब तुमने ऐसे कहा, हाँ चलो मेरे साथ। तो आखिर यमराज ने पकड़ ही लिया उस व्यक्ति को। तो खैर, हम जितना भी प्रयास करें यमराज से छूटने के लिए छूट नहीं सकेंगे। तो क्यों हमारा मूल्यवान समय हमें इंद्र तृप्ति में गंवाना चाहिए, जब ये सब हमसे छीन लिया जाने वाला है। तो ये है, जो व्यक्ति जबरदस्ती यहां रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, निरासक्त नहीं होना चाहते हैं, इसी चीज को परम समझते हैं, क्या कहा जा सकता है इनके बारे में। अपने आप को सुखी समझते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वास्तव में बुद्धिमान है, जो भौतिक बुद्धि के परे चले जाते हैं, जो पहले श्रेणी का व्यक्ति है, वो भौतिक बुद्धि का प्रयोग करके सुख पाने की चेष्टा करता है। परंतु जो इस भौतिक बुद्धि के परे हो गए हैं, बुद्धे परम गतः, जो आत्मा के स्तर में स्थित हैं, भक्ति के स्तर में स्थित हैं, वो एक अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। और जब तक हम ये भोग का सुख और निराकार ब्रह्म में लीन होने का सुख, जो पहले दो प्रकार के सुख हैं, जब तक हम इन दोनों को त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ये तीसरे प्रकार का सुख का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग त्यागना ही नहीं चाहते हैं, नरक भी जाने के लिए तैयार हैं, पशु बनने के लिए तैयार हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में प्रवचन दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखो, ऐसे 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 कर्म करने से ऐसे परिणाम होगा। तो जो व्यक्ति मांस खाता है और ऐसे ऐसे पाप करता है, उसे एक पशु बनना होगा। तो बाद में एक विद्यार्थी ने पूछा कि पशु बनने में क्या नुकसान है, यदि मैं कुत्ता भी बन जाऊं तो उसमें क्या खराबी है। तो प्रभुपाद ने पूछा, तो बनना चाहते हो क्या? हाँ, कोई बात नहीं, बनेंगे तो ठीक है। तो प्रभुपाद ने कहा कि फिर निश्चित ही बनोगे, ऐसी इच्छा तुम्हारी है तो निश्चित ही बनोगे। तो ये पहले श्रेणी के व्यक्ति मूढ़ तमह, पशु भी बनना इनकार नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनके लिए वैसे ही है, वहां की इंद्र तृप्ति वहां की इंद्र तृप्ति एक ही जैसी है ना। एक बार एक व्यक्ति थे, उनके पास एक भक्त गए, उनको प्रचार कर रहे थे कि भाई इतना शराब नहीं पीना, ये पाप होता है, और ऐसे शराब पीने से तुम नरक जाओगे, वह बहुत यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अच्छा, शराब पीने से, ऐसे पाप करने से नरक जाना पड़ता है? हाँ। अच्छा, वो सुरेन बाबू हैं, वो तो शराब पीते हैं, हाँ, तो वो भी नरक जाएंगे। अच्छा, वो विक्रम बाबू हैं, वो भी शराब पीते हैं, हाँ, वो भी नरक जाएंगे। तो सबका नाम लेने लगा, और वो ऐसे है, वो ऐसे मांस खाता, वो ऐसे करता है, उसको भी जाना पड़ेगा। और जितने भी उसके पहचान के लोग थे, मित्र थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी थे संसार में, सबके नाम लिए, सभी लोग ऐसे ही काम करते थे। तो भक्त ने कहा, ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। तो क्या अच्छी बात है ना, फिर वह नरक में जाके भी हम बहुत अच्छा हमारे मित्रों के साथ में रहेंगे, जो यहाँ कर रहे हैं वहां भी करेंगे, सारे लोग मेरे साथ में ही आएंगे, हम सब एक साथ में रहेंगे, तो नरक जाने में क्या बुराई है। प्रभुपाद जी कहते हैं, उसी प्रकार से इस दुनिया में लोग देखते हैं, वो भी शराब पी रहा है, वो भी पाप कर रहा है, वो भी भोग कर रहा है, ये भी भ्रष्टाचार कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो हम भी करेंगे, सब साथ में है, भेड़ चाल, सब लोग कर रहे हैं तो इसमें हमें साहस मिलता है। हम अकेले तो नहीं है पाप करने वाले, ये सब है ना, हम जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे ना नरक में, ये भावना है। नरक जाने से भी नहीं डरते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि वास्तव में नरक में क्या मिलने वाला है, बल्कि उनका जीवन यहीं पर नरक है। ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धियेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, जो देह भाजा, जिन आत्माओं को, जिन व्यक्तियों को ये भौतिक देह प्राप्त हुआ है, न अयम देह, उनमें से इस मूल्यवान मनुष्य देह को जिन्होंने प्राप्त किया है, न अर्हते, उनको ये शोभा नहीं देता, कष्टान कामान विड़भुजाम ये, कि वो भी ऐसे इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना समय गवाएं जो कि विड़भुजाम, जो गंदी चीजें खाने वाले पशु होते हैं उनके लिए भी उपलब्ध होते हैं। साधारण इंद्रियों की तृप्ति के कार्य जो हैं या विषय हैं वो सबके लिए उपलब्ध हैं, पशुओं के लिए भी है, मनुष्यों के लिए भी है। तो यदि इतना मूल्यवान मनुष्य देह पाकर, जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया है हमें, हम पशु जैसे ही कार्य करेंगे तो फिर क्या फायदा है। इसलिए हे पुत्रों, दिव्य तपस्या करनी चाहिए जिससे कि हम शुद्ध हो जाएंगे और फिर ब्रह्म सुख जो अनंत है, जो भगवान के भक्ति का सुख है, जो सच्चा आध्यात्मिक सुख है, हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारा कर्तव्य है मनुष्य जीवन में। तो तीसरे श्रेणी का सुख प्राप्त हमें करना चाहिए। यहां जो दो प्रकार के लोग हैं उसमें से दूसरे प्रकार के व्यक्ति की तरह हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। इस समय हम बीच में है ना, क्लिश्यति अंतरितो जना है, बीच में जो लोग हैं जो ना मूर्ख है और ना जो आत्म साक्षात्कारी है, अधिक कई लोग सब बीच में हैं। हम सब भक्ति करके प्रगति करना चाह रहे हैं लेकिन इधर भी एक पांव है, उधर भी एक पांव है। इधर पूरी तरह से संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं, दूसरी ओर भक्ति की ओर भी थोड़ा बहुत आकर्षण है, हम बढ़ना चाहते हैं तो संसार का दुख भोग भी रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस दूसरे प्रकार के व्यक्ति की तरह बनने का प्रयास करें। अगली बार जब आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, जब आप उसको प्रचार करेंगे, कहेंगे कि भक्ति कीजिए वगैरह आप प्रचार करेंगे, और वो कहेंगे नहीं मैं तो सुखी हूं, मेरे को क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है, तो फिर आप ऐसे व्यक्ति से पूछिए, आप दोनों श्रेणी में से कौन से श्रेणी में हैं? आप कहते हैं ना आप सुखी हैं, तो आप पहले श्रेणी के सुखी व्यक्ति हैं या दूसरे तरह के आप सुखी व्यक्ति हैं? उनको ये श्लोक सुनाइए आप और बोलिए कि आप बताइए आप कौन से श्रेणी में आते हैं। तो जब तक हम ये प्रथम श्रेणी वाले तथाकथित सुख को नहीं त्यागेंगे, वो दूसरे प्रकार के श्रेष्ठ भक्ति के सुख को हम नहीं पाएंगे। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये भुक्ति या भोग करने की जो इच्छा है, और मुक्ति निराकार ब्रह्म में लीन होने की जो इच्छा है, ये दोनों एक चुड़ैल के समान है जो किसी व्यक्ति के हृदय पर छा जाती हैं। और जब तक ये दो चुड़ैलों का प्रभाव हमारे हृदय में रहता है, तावत भक्त सुखत यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत, कैसे हमें भक्ति के सुख का अनुभव होगा, ये संभव नहीं है। तो जो व्यक्ति श्रेष्ठ श्रेणी के आनंद को पाना चाहता है, उसी निम्न श्रेणी के तथा कथित झूठे मिथ्या आनंद को त्यागना चाहिए। एक पाना है कुछ तो कुछ खोना चाहिए। ऐसे संभव नहीं है कि हम ये भी आनंद प्राप्त करें और वो भी आनंद प्राप्त करें, ये संभव नहीं है। दोनों में से एक को हमें चयन करना होगा, चाहे हम यहां पहले प्रकार के व्यक्ति की तरह बने या तो दूसरे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का, कि हम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाएं। और भक्ति के सुख को प्राप्त करके व्यक्ति इतना संतुष्ट होता है कि न उसे संसार का सुख चाहिए और न उसे निराकार ब्रह्म में लीन होने का सुख चाहिए। भगवान की भक्ति करते हुए वह पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। जैसा कि सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं दामोदर अष्टकम में, हम जो कार्तिक महीने में गाते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न वृणेहम चाहम वृणेशदपिह इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्ता कि मन्येह। वो क्या करते हैं कि हे कृष्ण, आप तो वरदराज हैं, वरदान प्रदान करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मैं आपसे ऐसा वरदान नहीं चाहता जैसे संसार में लोग मांगते हैं। वरम देव मोक्षम, आप वरम देव हैं, तो आपसे मैं न मोक्ष चाहता हूं, निराकार ब्रह्म में लीन होना, न मोक्षावधिम वा, नहीं न हमें मोक्ष तक, और जितने भी वरदान हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। मोक्षाम मोक्ष अवधि मतलब मोक्ष तक, अर्थात ये संसार के सारे वरदान, न मुझे संसार का कुछ चाहिए न मुझे मोक्ष भी चाहिए। न वृणे हम वरेशाद अपीह, हे वर ईश, वरदान प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, आपसे ऐसे कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, इदम ते नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविरास्ताम के मन्ये ही, कि आपका बाल गोपाल का जो रूप है, जो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, ये रूप मेरे मन में सदा रहे और ऐसे सुंदर रूप का दर्शन मैं सदा करते रहूं, और ऐसे दर्शन ही मैं चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता, कि आप मेरे मन में इस रूप में सदा विराजमान रहें, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैसे संभव है, सत्यव्रत मुनि ऐसे हृदय से कैसे कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में इतना श्रेष्ठ आनंद है कि संसार का सुख और यहां तक कि मोक्ष भी बहुत तुच्छ प्रतीत होता है भक्ति की तुलना में। और जो भक्त है, शुद्ध भक्त होता है, उसके सामने तो सभी तरह के संसार के सुख और मोक्ष का सुख भी उपलब्ध होता है उसे, लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करता इनको। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात्। वो कहते हैं यदि मैं कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर होता है, दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, और मैं आपको सब जगह देखता हूँ, आपका दर्शन सदैव करता हूँ, तो क्या होता है, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गत यह समय प्रतीक्षा, कि मुक्ति देवी स्वयं हाथ जोड़ के मुकुलितांजलि मेरी सेवा में सामने उपस्थित रहती हैं कि मुझे स्वीकार कीजिए। और मुक्ति देवी अकेली नहीं रहती हैं, धर्म अर्थ काम उनके साथ में रहते हैं, समय प्रतीक्षा वो भी प्रतीक्षा करते हैं धैर्य रख के कि कभी ना कभी तो हमें स्वीकार कीजिए, लेकिन मुझे इनके लिए कोई समय नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो ये है भक्ति का आनंद। जब श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है तो निम्न श्रेणी के आनंद को व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है। तो यही हमारा अधिकार है, मनुष्य जीवन में हमारा अधिकार है कि हम ये श्रेष्ठ भक्ति के आनंद को प्राप्त करें। जो निम्न श्रेणी का आनंद है, जो पशु भी पा सकते हैं, ऐसे तथाकथित सुख में रमण करना हमें शोभा नहीं देता है, ऐसे श्रीमद् भागवत का कथन है। तो और तीव्रता से हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है? इंद्रिय तृप्ति या ये संसार के सुख को हम कैसे त्याग सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं जो इंद्रिय तृप्ति को त्याग चुका है? पहली बात ये है कि जीव का स्वभाव है सुखी होना। तो जीव कोई ना कोई ऐसे कार्य करेगा, स्वभाव से जीव क्रियाशील है। तो यदि हम ऊंचे श्रेणी का सुख नहीं पाएंगे तो निम्न श्रेणी के सुख से संतुष्ट अपने आप को करने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार का सुख त्यागना है निम्न श्रेणी वाला, तो हमें ऊंचे प्रकार का सुख अनुभव करना होगा। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के सुख से परे होना चाहता है, उसे कृष्ण भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए, जिससे कि उसे कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त हो जाएगा। जिस रस को प्राप्त करने से व्यक्ति निम्न श्रेणी के रस को भूल जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो मिट्टी खा रहा होता है या कुछ दूसरा कोई अपने मुंह में ले लेता है, माँ आके उसको लॉलीपॉप देती है तो वो मिट्टी छोड़ के लॉलीपॉप खाने लगता है। श्रेष्ठ सुख बच्चे के लिए, उसी तरह से हमारे लिए भी श्रेष्ठ सुख है भक्ति। तो भक्ति करेंगे तो अपने आप ये संसार के सुख की जो तृष्णा है वो छूट जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि कभी कभी भक्ति मार्ग में भी हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो हम ऐसे कैसे ये देखें कि हम भक्ति में भी हम भोक्ता ना हो जाएं? नहीं, भोक्ता तो नहीं होना है, परंतु भक्ति का आनंद करते करते अवश्य मिलेगा हमें, वो स्वाभाविक है। जैसे जब हम कीर्तन करते हैं, कोई अच्छी कथा सुनते हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते हैं, कुछ अच्छा प्रसाद भी लेते हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, तो थोड़ा बहुत आनंद तो मिलता ही है, तो ये स्वाभाविक है। ऐसे आनंद से हमें क्यों जाना चाहिए? अवश्य इसका पूरा आनंद हमें लेना चाहिए, परंतु आनंद नहीं भी आए फिर भी भगवान की सेवा छोड़नी नहीं चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। हम भगवान की सेवा में स्थिर रहेंगे तो अवश्य हमारी भक्ति का आनंद भी न केवल स्थिर रहेगा, वो निरंतर बढ़ता जाएगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। प्रश्न ये है कि पिछले महीने में न्यूजीलैंड देश में एक भूकंप हुआ और गौर निताय की मूर्तियां हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और नुकसान हो गया, तो भगवान ने अपने आप की रक्षा क्यों नहीं की? हालांकि एक भक्त, कोई किसी भक्त को नुकसान नहीं हुआ। तो भूकंप किसके नियंत्रण में हुआ? कृष्ण के नियंत्रण में हुआ। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत परिवर्तते। तो ये भौतिक सृष्टि, ये भौतिक प्रकृति भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन है। तो भगवान यदि अपने ही मूर्ति को कुछ नुकसान कराना चाहें तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चीजें भगवान की ही है। परंतु ये सारे दुनिया में इतने सारे प्राकृतिक अपघात हो रही हैं और अब आफतें आ रही हैं, इससे हम जान सकते हैं कि पाप बहुत बढ़ गया, इसलिए प्रकृति जो है अभी प्रतिकार कर रही है, परिणाम दिखा रही है हमारे सारे पाप का, सारे सृष्टि में पृथ्वी लोक के ऊपर। इसलिए एक के बाद एक ऐसे भयंकर आपत्तियां आ रही हैं। गृहस्थ जीवन में कैसे भक्ति करके सुखी बन सकते हैं? बस वैसे भक्ति करके ही सुखी बन सकते हैं। भक्ति करते जाइए और देखते जाइए, लेकिन अच्छी तरह से भक्ति करनी है। ये प्रश्न है कि क्या प्रमाण है कि पाप करने से हम नरक में जाएंगे? आशा करते हैं कि कभी आपको प्रमाण नहीं मिले। अनुभव करने का प्रमाण सबसे निकृष्ट श्रेणी का प्रमाण है। सुन के जब हमें समझ में आता है तो वो सबसे अच्छा प्रमाण है। एक चोर यदि कहे, क्या प्रमाण है कि चोरी करने से हमारी पिटाई होगी और जेल में डाला जाएगा? नहीं भाई, सुनो, ऐसे जेल में जाओगे, पिटाई होगी, नहीं, क्या प्रमाण है? तो ठीक है भाई, करो फिर, और फिर पिटाई होगी, फिर जेल में जाएगा, तब कहेगा हाँ प्रमाण है। तो हमें क्यों नरक जाने के लिए रुकना चाहिए? हम शास्त्रों में विश्वास करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अलग अलग तरह के कर्मों के लिए अलग अलग गतियां होती हैं, जैसे करनी वैसे भरनी। तो जो लोग पुण्य करते हैं वो स्वर्ग की ओर जाते हैं, और जो लोग मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसी लोग हैं वो यहाँ बीच में रहते हैं, जघन्य गुणवृत्ति स्थ अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवद गीता में बताया गया है कि जो लोग तमोगुण में हैं उनकी अधोगति होती है, निम्न श्रेणी के योनियों में जाते हैं या तो नरक में जाते हैं। तो शास्त्रों का प्रमाण है, हमारे लिए शास्त्रों का प्रमाण ही सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो हम प्रकृति के साथ एक संतुलित अवस्था कैसे बनाए रख सकते हैं आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से? पहली बात यह है पाप नहीं करके, और दूसरी बात है भगवान की भक्ति करके। ये दो चीजें करेंगे तो प्रकृति के साथ हमारा पूरा संतुलन हो जाएगा। फिर ये संसार भौतिक जगत नहीं रहेगा, ये भगवान का धाम बन जाएगा। प्रश्न ये है कि फूलों के जो अंकुर होते हैं उनको कैसे भगवान के लिए माला बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? विषय से कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन है भी विषय का, क्योंकि भक्ति की बात तो कर ही रहे थे। हाँ, फूलों के साथ साथ आप बना सकते हैं, जो माताएं हार बनाती हैं आप उनसे पूछ लीजिए, ठीक है? और कोई प्रश्न किसी के? ठीक है, भक्ति की, भक्ति का परिभाषा क्या है? भुक्ति, भुक्ति की परिभाषा, भुक्ति मतलब भोग, इंद्रिय तृप्ति, संसार का भोग करना, भगवान की सेवा न करके केवल अपनी सेवा करना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास उसको भुक्ति कहते हैं, और कृष्ण की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास उसको भक्ति कहते हैं। तो भुक्ति और भक्ति में केवल एक छोटी सी मात्रा का अंतर है, लेकिन वैसे बहुत बड़ा अंतर है। एक है अपने संतुष्टि चाहना और दूसरा है कृष्ण की संतुष्टि चाहना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।